जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र राधे, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय शुभद्र, जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय, जय बालाजी भगवान बालाजी भगवान बालाजी भगवान, जय बालाजी भगवान, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল শ্রী হরিনাম সংকীর্তন কি জয় শ্রীল প্রভুপাদ কি জয় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় নারায়ণম নমস্কৃত্যম নরম চৈব নরোত্তমম দেবীম সরস্বতীম ব্যাসম ততো জয় মুদীরয়ে নষ্টপ্রায়েষু অভদ্রেষু নিত্যম ভাগবতস্যেবে ভগবতেরুত্তম শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী নন্দনায় চ নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমঃ। हरे कृष्ण। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय क्रमांक 28। अध्याय का शीर्षक है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। श्लोक क्रमांक 38। तपसा विद्या पक्व कषायो नियमैर्यमे युयुजे ब्रह्माणे आत्मानम् विजिताक्षा निलाश्रयः तपसा विद्यया पक्व कषायो नियमैर्यमे युयुजे ब्रह्माणे आत्मानम् विजिताक्षा निलाश्रयः तपसा विद्यया पक्व कषायो नियमैर्यमे युयुजे ब्रह्मण्य आत्मानम् विजिताक्ष निलाश्रयः। माता तपसा विद्या पक्व कषायो नियमैर्यमे युयुजे ब्रह्माण्य आत्मानम् विजिताक्ष निलाशयः। शब्द तपसा तपस्या से, विद्या शिक्षा से, पक्व जलाकर, कषाय समस्त मल, नियम विधानों से, यम आत्मसंयम से, युयुजे उसने स्थिर किया, ब्रह्माणि ब्रह्म में, आत्म साक्षात्कार में, आत्मानम अपने आप को, विजित पूर्णतया वश में, अक्ष इंद्रियां, अनिल प्राण, आशय चेतना। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अद्वैत शरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। पूजा से, तप साधना से तथा नियमों के पालन से राजा मलय ध्वज ने अपनी इंद्रियों, प्राण तथा चेतना को जीत लिया। इस प्रकार उसने हर वस्तु को परब्रह्म कृष्ण रूपी केंद्र बिंदु पर स्थिर कर लिया। तात्पर्य, जब भी ब्रह्म शब्द आता है तो निर्विशेषवादी इसका अर्थ ब्रह्म ज्योति के रूप में करते हैं, किंतु वास्तव में परब्रह्म तो कृष्ण या वासुदेव हैं, जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है, वासुदेव सर्वम इति। वासुदेव निर्गुण ब्रह्मा की भांति सर्वत्र व्याप्त हैं। कोई किसी निराकार वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता, इसलिए भगवद्गीता में कहा गया है, क्लेशो अधिकतरस तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। जिनके मन अप्रकट निराकार ब्रह्म में केंद्रित हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना कष्टप्रद है। अतः जब यहाँ पर यह कहा जाता है कि राजा मलयध्वज ने अपना मन ब्रह्म में स्थित कर दिया, तो ब्रह्म का अर्थ है भगवान वासुदेव। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विधांश। नमो विष्णुपादाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुवेश कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सभी उपस्थित भक्तों से और एफएम पर सुनने वाले भक्तों से आशीर्वाद की याचना करता हूँ, जिससे कि भक्तों की सेवा के रूप में कुछ बोलने का प्रयास मैं कर सकूँ। ये भगवान का आयोजन था कि जो तपस्या के ऊपर जो श्लोक थे, पिछले दो श्लोकों में जो चर्चा हुई, उसके लिए परम पूज्य भक्ति धीर दामोदर महाराज यहाँ पर उपस्थित थे और इतना सुंदर तरीके से तपस्या के बारे में वर्णन किया। क्योंकि जिस सिद्धांत का हम हमारे जीवन में पालन करते हैं, उस सिद्धांत को जब हम बोलते हैं तो उससे बाकी लोगों के हृदय में भी उसके लिए प्रेरणा मिलती है। तो महाराज के संग मात्र से इस बार जो एकादशी थी उसको कई भक्तों ने निर्जल एकादशी कहा, केवल संग मात्र से। और आशा है कि आने वाले दिनों में ब्रह्मचर्य आश्रम की तपस्या में थोड़ा बढ़ोतरी होगी महाराज के संग के कारण। तो ये राजा मलय ध्वज का संदर्भ चल रहा है, प्राचीन परिषद जो कि नारद मुनि से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो नारद मुनि पुरंजन की कथा बताते हुए बताते हैं किस प्रकार से पुरंजन एक नौ द्वार के शहर में आकर रहता है, बाद में वो शहर पर आक्रमण होता है और शहर छोड़कर जाना पड़ता है। तो किस प्रकार से जीवात्मा को मृत्यु के समय शरीर त्याग करना पड़ता है उसका वर्णन विवरण विस्तार से करते हैं पिछले अध्याय में, इस अध्याय की शुरुआत में। और उसके उपरांत जो पुरंजन है, क्योंकि वे अपनी पत्नी से और बच्चों से आ सकते हैं, इसलिए एक स्त्री का शरीर वो धारण करते हैं। यम यम वापि स्मरण भाव त्यजते अंते कलेवरम। मृत्यु के समय जिस चीज का जिस भाव का स्मरण हम करते हैं उसी प्रकार का शरीर हमको प्राप्त हो जाता है। तो विदर्भ राजा के घर पर एक कन्या के रूप में जो पिछली बार पुरंजन नाम के राजा थे वो वैदर्भी नाम की कन्या बन जाते हैं, और उनको मलयध्वज नाम के राजा के साथ उनका विवाह होता है। तो प्रभुपाद जी जो वैदर्भी और मलयध्वज का पत्नी और पति का संबंध है उसको गुरु और शिष्य के संबंध से तुलना करते हैं, और जिस प्रकार से जीवात्मा को ब्रह्मांड में कई कई जन्मों तक अनगिनत जन्मों तक भ्रमण करने के बाद एक गुरु की प्राप्ति होती है और वही उसका सबसे बड़ा सौभाग्य होता है, उसी प्रकार से पुरंजन कई शहरों में कई बार रह करके फिर वैदर्भी नाम की कन्या बन करके जब मलयध्वज नाम के राजा के साथ उनका विवाह होता है तो उनके जीवन का वास्तविक सौभाग्य उदय होता है, क्योंकि वो एक प्रमाणिक गुरु की शिष्यता को स्वीकार करता है। तो किस प्रकार से वैदर्भी मलयध्वज की सेवा करती हैं उसका वर्णन किया है, और प्रभुपाद जी यहाँ पर गुरु और शिष्य के संबंध के बारे में कई सारी सुंदर बातें लिखते हैं तात्पर्य में। और थोड़े समय के उपरांत इसी अध्याय में या इसके बाद वाले अध्याय में जब मलयध्वज शरीर त्याग कर चले जाते हैं तो वैदर्भी का क्या भाव रहता है और उनके हृदय के अंदर क्या भावनाएं आती हैं उसका वर्णन प्रभुपाद जी करते हैं, और कहते हैं कि इस प्रकार की भावनाएं भी एक शिष्य के अंदर होनी चाहिए जब गुरु इस जगत को त्याग कर चले जाते हैं। तो हालांकि कथा की दृष्टि से ये पत्नी और पति का संबंध है, लेकिन प्रभुपाद जी उसका वर्णन गुरु और शिष्य के संबंध के रूप में करते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भौतिक जीवन को भौतिक जीवन से बाहर निकलने के लिए भौतिक कलमश से निकलने के लिए केवल एक ही मार्ग है, वो है आध्यात्मिक गुरु के शरण लेना, और दूसरा कोई मार्ग इसमें नहीं है। क्योंकि जब प्रभुपाद जी गुरु के बारे में प्रभुपाद जी के जो प्रवचन है उसमें सबसे ज़्यादा वर्णन अगर किसी वस्तु का है तो वो है गुरु को स्वीकार करना, दूसरे स्तर पर निर्विशेषवाद का खंडन करना, इस पर प्रभुपाद जी बहुत चर्चा करते हैं, इंद्र तृप्ति का भर्सना करना। तो ये कुछ शीर्षक है जिनमें प्रभुपाद जी के प्राय सभी लेक्चरों में कुछ ना कुछ आप उस संबंध में पाते हैं। तो बहुत ही जगत से निकलने के लिए भगवान अपनी करुणा का एक साकार रूप बनाकर भेजते हैं और उस रूप को गुरु कहते हैं। तो जो गुरु तत्व है या जो गुरु जी है वो भगवान की करुणा का एक स्वरूप है, वो भौतिक व्यक्ति नहीं है, वो करुणा का स्वरूप है। क्योंकि भगवान जीवात्मा से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि जीवात्मा वापस उनके धाम में आकर उनके साथ लीला में भाग ले। तो जीवात्मा को वापस अपने धाम लाने के लिए भगवान अपना जो करुणा का स्वरूप बनाकर भेजते हैं उसको गुरु कहा जाता है। इसलिए गुरु जो है सबसे कृपालु है, गुरु के माध्यम से ही बाकी अन्य जो भगवान की कृपा है उससे जुड़ सकते हैं। तो जो हमारा भक्ति रसामृत सिंधु है इसमें पांच मुख्य अंग बताए गए हैं भक्ति के, पांच मुख्य चीजें 64 में से। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी बात वर्णन करते हैं कि ये पांच मुख्य हैं लेकिन ये सर्वप्रथम नहीं है, सर्वप्रथम भक्ति के 10 अंग बताए गए हैं, और जो पहले पांच अंग हैं वो पांचों अंग गुरु से संबंधित हैं। तो पहले और मुख्य में अंतर है, ये समझना चाहिए, पहला और जो मुख्य है वो अंतर होता है। जैसे कि मान लीजिए मंदिर हॉल है, तो अभी आज मंदिर हॉल में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है इस मंदिर हॉल में? विग्रह, ऑल्टर। लेकिन ये पहले नहीं है, सबसे पहले जब मंदिर बनता है तो पहले उसकी नींव डाली जाती है, 2006 और 7 में जब काम चल रहा था, तो अभी कल्पना से परे है क्या क्या इसकी स्थिति थी जब सुदर्शन यज्ञ हुआ था, उसके बाद नींव खोदी गई थी। तो उस समय पता नहीं था कि इतना भव्य, इतना सुंदर मंदिर बन करके आएगा बाद में। तो पहले नींव डाली जाती है और उसके बाद फिर निर्माण कार्य शुरू होता है। इसीलिए भक्ति के सभी अंगों में जो पहले कार्य है उनको चुन करके पहले स्थान पर रखा गया है, उनको चुन करके रखा गया, ये रैंडम नहीं है। ऐसा श्रील रूप गोस्वामी पद वर्णन करते हैं, पहले अंग हैं, पहले इनका पालन करना पड़ेगा, उसके बाद बाकी अंग हैं और उन अंगों में सबसे मुख्य ये अंग है। तो जो पहला अंग है वो है आदो गुरु पादाश्रय, क्योंकि बिना गुरु के शरण लिए अगर कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसको भगवान प्राय स्वीकार नहीं करते हैं, अज्ञा सुकृति के रूप में माना जाता है। भगवान से प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए, भगवान को पूर्ण प्रसन्न करने के लिए गुरु के माध्यम से जाना अनिवार्य है, कोई और रास्ता नहीं है, बाईपास नहीं कर सकते। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, तो यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद हो गया, लेकिन अगर इतना ही लाइन रहता तो हो सकता है और कुछ भी हो सकता था, इसीलिए क्या करते हैं, यस्य प्रसादान नगति गुतो। तो ये जो वैष्णव आचार्यगण लिखते हैं पूरा फुल प्रूफ लिखते हैं, जिससे कि जीवात्मा को कुछ स्पेकुलेट करने के लिए ज़्यादा चांस नहीं रहे। जैसे कि हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, तो उतना भी ठीक है, लेकिन फिर क्या बोलते हैं, कलव नास्तेव 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 न गतिर अन्यथा, दोनों तरफ से बोलते हैं, जिससे कि पूरी तरह से जीवात्मा आश्वस्त हो जाए कि यही एक मार्ग है। तो यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद वो करते हैं कि केवल गुरु के माध्यम से, गुरु की प्रसन्नता के माध्यम से जब सेवा भगवान को अर्पण की जाती है तब भगवान की कृपा हम प्राप्त करते हैं। तो अगर किसी को स्वर्ग में जाना है या ब्रह्म ज्योति में लीन होना है या परमात्मा का साक्षात्कार करना है या चार प्रकार की मुक्ति भी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए अगर गुरु से प्रगाढ़ संबंध नहीं भी है तब भी व्यक्ति इन चीज़ों को प्राप्त कर सकता है अपनी चेष्टा से। लेकिन गौड़िया वैष्णव सिद्धांत जो प्रेम भक्ति प्राप्त करने का है, उस मार्ग में गुरु को छोड़कर कोई दूसरा जो तत्व है या दूसरा जो व्यक्ति है वो हमारी सहायता नहीं कर सकता। उसके लिए गुरु के शरणागत होना परम आवश्यक है, कोई दूसरा मार्ग इस प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं है। इसलिए जो पहले पांच तत्व हैं, आदो गुरु पादाश्रय, दीक्षास्ति, दीक्षा ग्रहण करना, गुरु की सेवा करना, गुरु से आचार्यों के बारे में सुनना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रथम है। जब इनको हम करते हैं तो इसके बाद जो बाकी के भक्ति के जो बाकी अंग हैं उनका भी हमको परिपूर्ण लाभ मिलता है। तो यहाँ पर वैदर्भी को मलयध्वज पति के रूप में या गुरु के रूप में प्राप्त हुए, और उसके बाद मलयध्वज का वर्णन है किस प्रकार वो पूरा राज्य पुत्रों को छोड़कर फिर वन में तपस्या के लिए चले जाते हैं, और उसके बाद फिर वे उन्होंने अपने हर वस्तु को पर ब्रह्म रूपी केंद्र बिंदु पर स्थिर कर दिया। तो जहाँ भी ब्रह्म शब्द आता है तो प्रभुपाद जी तुरंत उसको स्पष्टीकरण करते हैं, क्योंकि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारण, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रखना चाहते। तो इसीलिए तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ब्रह्म है ये निराकारवादी ब्रह्म की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम। तो ये जो परम ब्रह्म है वो भगवान कृष्ण है, और एक भक्ति में प्रगति के उच्च स्तर पर व्यक्ति हर चीज को और हर स्थिति को और हर व्यक्ति को भगवान से जोड़कर देखता है। जैसे कि जो लोग भक्त नहीं है अगर भारत में जन्म हुए तो कहते हैं ये सब विधि का विधान है, ये हमारा भाग्य है, लेकिन ये एक तरह का मायावाद है, निर्विशेषवाद है, पता नहीं कि वो भाग्य बनाने वाला कौन है। भारत तो भाग्य विधाता, विधाता को पता नहीं। प्रभुपाद जी कहते थे कि वो कहते ओ हे तुम्हें, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें, वो तुम कौन है वो पता नहीं, तुम्ही बोलते हैं लेकिन तुम कौन है वो बोलते हैं कि वो निर्विशेषवादी ब्राह्मण है। तो वैसा नहीं है, जो भक्त है वो जिसके जीवन में जो स्थिति आती है इस भी प्रकार की स्थिति आती है, उसको भगवान कृष्ण का व्यक्तिगत अरेंजमेंट, व्यक्तिगत उसके लिए आयोजन मानता है, भगवान कृष्ण का और गुरु का। ऐसा निर्विशेषवादी नहीं कि कहीं से तो आ गया, भाग्य के कारण आ गया या हमारे डेस्टिनी के कारण आ गया, ऐसा नहीं। भगवान को व्यक्तिगत रूप से पीछे देखता है कि ये भगवान ने मेरे शुद्धिकरण के लिए, मेरे भक्ति में प्रगति करने के लिए ये स्थिति का आयोजन किया है, जो भी कुछ जीवन में होता है। तो इस प्रकार से वो हर जीव को भगवान से जोड़कर देखता है, इसीलिए क्या करता है, सकल सम्माने कौरवे शक्ति, हर व्यक्ति जीव को सम्मान देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इस जगत में रहते हुए एक जीवात्मा से भी, हमारे आश्रम के ब्रह्मचारी भक्त से नहीं, एक जीवात्मा से भी, कोई भी जो श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री जगन्नाथ बल्ली सोदरामय की जय, श्री श्री गौणता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, तो रहते हुए जीवन में रहते हुए अपने साथी को छोड़िए, रूम पार्टनर इत्यादि तो छोड़िए, अगर एक भी जीवात्मा से द्वेष का भाव है, मच्छर अच्छा नहीं लगता है, कॉकरोच अच्छा नहीं लगता है, अच्छा लगना मतलब ये नहीं कि उनको हम फालतू बनाएंगे, लेकिन अगर हमारे मन में ऐसा भाव आता है कि ये क्यों है, ये परेशान करने वाला है, कोई भी प्राणी हो, अगर कोई भी एक प्राणी अगर हमको अच्छा नहीं लगता है तो हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भगवान का अंश है, इसलिए भगवान का अंश होने के कारण जो व्यक्ति प्रगति करता है, तो भगवान से जब प्रेम होता है तो भगवान के सभी अंशों से स्वाभाविक रूप से प्रेम जागृत होता है, और वही प्रेम करुणा का रूप लेता है जिसके कारण भक्त प्रचार करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्टीकरण करते हैं कि ये जो ब्रह्म शब्द है, ये पर ब्रह्म भगवान को नियोजित कर रहा है। तो कल क्योंकि बलराम जयंती है, इसलिए थोड़ा सा गुरु तत्व के ऊपर और थोड़ा चर्चा करेंगे। तो गुरु तत्व के माध्यम से भगवान एक जीवात्मा का उद्धार करते हैं। जीवात्मा का उद्धार करने के लिए भगवान गुरु के रूप में उसके समक्ष प्रकट होते हैं, ऐसा चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, सनातन गोस्वामी को जब महाप्रभु शिक्षा देते हैं उस समय। तो गुरु स्वीकार करना ये सबसे बड़े सौभाग्य का उदय माना जाता है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता दी। और उस संबंध को बनने के बाद, जैसा कि अगर हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसका पोषण करना पड़ता है। अगर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, उसका नियमित रूप से पोषण नहीं करते, तब वह उसको हानि हो सकती है, मर भी सकता है। तो उसी प्रकार से गुरु के साथ जब संबंध स्थापित होता है, विशेष रूप से दीक्षा गुरु से दीक्षा के समय पर, और हम कई भक्तों से शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उस संबंध में अपने कर्तव्य का पालन करना ये बहुत ही अनिवार्य है। और शिष्य के रूप में ये हमारा परम कर्तव्य है कि इस पर मनन करें कि हमारे गुरुजी किस चीज़ से प्रसन्न होंगे, हम क्या ऐसी चीज़ करें जिससे गुरुजी प्रसन्न हो जाए। क्योंकि अगर गुरुजी प्रसन्न है तो निश्चित रूप से भगवान की प्रसन्नता हो ही जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं। तो इस पर मनन करने के लिए व्यक्ति को गुरु के इच्छाओं पर, गुरु के निर्देशों पर बहुत तीव्रता से मनन करना पड़ता है। और यही मनन जो है, यही जो गुरु का स्मरण है, ये वास्तव में एक शिष्य की वास्तविक संपत्ति है। गुरु का आदेश, गुरु की सेवा और गुरु का स्मरण, ये एक शिष्य जो है उसकी वास्तविक संपत्ति है। जो हम संस्था में कर पाते हैं, हमारे पास हो सकता है कुछ कलाएं हों हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार, लेकिन उन कलाओं का या जो हम संस्था में प्राप्त करते हैं उसका इतना महत्व नहीं है जितना कि इन चीज़ों का, जो कि आंतरिक है, जो दिखाई नहीं देती है। तो इसीलिए गुरु के साथ जो संबंध है उसका पोषण करना ये बहुत ही अनिवार्य है। और प्रभुपाद जी ने अपने जीवन से दिखाया कि किस प्रकार गुरु का आदेश ही हमारी सफलता की नींव है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं जो भी सफलता प्राप्त किया पाश्चात्य देश में प्रचार के लिए, उसके दो मूलभूत सिद्धांत हैं। एक है मुझे मेरे गुरु के आदेश में पूर्ण श्रद्धा थी। तो एक डोल गोविंद शास्त्री करके एक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के शिष्य थे, वो संस्कृत पढ़ाते थे। तो प्रभुपाद जी जब रहते थे कलकत्ता में, तो प्रभुपाद जी के घर के ऊपर ही उन्होंने भी, प्रभुपाद जी ने उनके लिए व्यवस्था की थी, वहाँ पर एक कमरे की व्यवस्था की थी जहाँ पर वो पढ़ाते थे कई शिष्यों को। तो एक बार जब ये श्लोक पढ़ रहे थे कि पृथ्वी ते आशियत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो भी मेरा नाम, तो संदेह करने लगे कि अरे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज पूरे भारतवर में प्रचार किया, इसमें पृथ्वी का वर्णन किया है, तो शायद पृथ्वी अर्थार्थ भारत ही होगा। अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद नहीं है तो कौन करे। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि देखिए, आपको श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में पूर्ण विश्वास नहीं है, लेकिन महाप्रभु की कृपा से भक्ति सिद्धांत महाराज का कोई तो शिष्य इसको, कोई मूर्ख शिष्य इसको अवश्य प्रमाणित, क्या बोलते हैं, प्रमाणित करेगा। तो प्रभुपाद जी को पूर्ण श्रद्धा थी चैतन्य महाप्रभु के वचनों में और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के वचनों में, और दूसरा उनको हरिनाम में पूर्ण श्रद्धा थी। तो जब ये तीन परिवार लंदन में आकर प्रचार करने वाले थे तो प्रभुपाद जी ने यही दो चीज़ें उनको बताई, अगर आपको मेरे आदेश में पूरी श्रद्धा है और आप हरिनाम पूर्ण श्रद्धा से लेंगे तो निश्चित रूप से जो काम मेरे सन्यासी गुरु भाई इतनी सब सुविधा के साथ नहीं कर पाए उस कार्य को करने में आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। और हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के आदेश में श्रद्धा लेकर के लंदन में इतना बड़ा प्रचार इन तीन परिवारों ने किया। तो गुरु के आदेश में श्रद्धा होना ये पूर्ण रूप से अनिवार्य है। तो बलराम जी जो है वो गुरु तत्व का, ये गुरु तत्व का निरूपण करते हैं, या पहले जो गुरु हैं वो बलराम जी हैं। कृष्ण जो है वो सेवित भगवान हैं जिनकी सेवा सब करते हैं, और सबसे प्रथम सेवक कृष्ण के हैं बलराम जी, क्योंकि बलराम जी का सेवा भाव इतना प्रगाढ़ है कि सभी पांचों रसों में भगवान की सेवा करते हैं। पूरा जो वृंदावन धाम है, कृष्ण भगवान का जो जो उनका सामग्री जो उनकी सेवा में लगती है, जैसे कि उनका पलंग हुआ या जूते हुए या बाकी अन्य चीज़ें हुई, सब बलराम जी के विस्तारित स्वरूप हैं, उनका सेवा भाव इतना प्रगाढ़ है। तो जो गुरु है बलराम जी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और गुरु का कर्तव्य होता है कि शिष्यों को सेवा भाव में प्रशिक्षण दें, किस प्रकार से निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करनी है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा भौतिक जगत में आने के बाद स्वार्थी बन जाता है, और स्वार्थ उसके जीवन का, चेतना का एक अंग बन जाता है। उसके लिए कुछ भी काम निस्वार्थ भाव से करना ये बहुत बड़ी तपस्या होती है। हर चीज को करने से पहले, हर कार्य को करने से पहले व्यक्ति सोचता है कि इसको करने से मुझे क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा, वॉट इज इन इट फॉर मी, FM चैनल है, वॉट इज इन इट फॉर मी। तो ये प्रश्न स्वतः ही आता है, इसके लिए कुछ विचार नहीं करना पड़ता, इसके लिए किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं चाहिए। कुछ भी करने से पहले व्यक्ति सोचता है इसको करूंगा तो अभी क्या आगे प्राप्त होगा। लेकिन गुरु जी सिखाते हैं कि आपको प्राप्त करने की कुछ आवश्यकता नहीं है, आपको एक ही चीज प्राप्त करनी है, वो है भगवान की प्रसन्नता, बस। क्यों प्राप्त करना है? क्योंकि वही हमारा वास्तविक धर्म है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक स्थिति है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है कि भगवान की सेवा करना, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यता से। तो ये गुरु जी अपने उदाहरण से और अपने प्रवचनों से, अपने आदेशों से हमको सिखाते हैं कि किस प्रकार से भगवान की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं करनी है, वो सेवा में जब कष्ट आए तो उन कष्टों को भी वरदान के रूप में, उन कष्टों को भी सुख से स्वीकार करना है। तुम्हारा सेवा है दुख हो जाता सही, तो परम सुख है, साधारण सुख नहीं है वो, परम सुख कहते। तो ये गुरु जी अपने जीवन से दिखाते थे। श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से देखिए, पूरा जीवन उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की आज्ञा को पालन करने के लिए प्रयास किया, बैक टू गॉडेड मैगजीन छापना शुरू किया, और दिल्ली में जाकर के बैक टू मैगजीन गॉडेड मैगजीन छाप करके उनका वितरण करना, उसके बाद पुस्तक छापने के लिए धनराशि जमा करने के लिए एक बार बिरला जी से मिले, एक बार जो गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर के भाई जी थे उनसे मिले, तीसरी बार सुमति मुरार जी से मिले, जब जाकर के भागवतम के पहले स्कंद के तीन पार्ट प्रकाशित हुए, हर एक वक्त से 5,000 रुपये लेकर के 300 कॉपी छापे प्रभुपाद जी ने। तो इतना कठोर परिश्रम किया, और बाद में जाने के लिए एक पानी के मालवाहक जहाज की टिकट के लिए इतना परिश्रम किया, और उस जहाज पर जाते हुए, भगवान के मिशन के लिए जाते हुए भी क्या होता है, हृदय का आघात होता है, हृदय का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक होता है। हमको पता है थोड़ा बैक पेन हो जाता है, नेक पेन हो जाता है, तो कितना विचलित हो जाते हैं, पूरा मन जो है डिस्टर्ब हो जाता है, और सेवा तो सबसे पहले रुक जाता है, हेल्थ रूम में शिफ्ट हो जाते हैं हम लोग। तो प्रभुपाद जी 70 वर्ष की आयु है, पानी का जहाज चलता हुआ जहाज है, पानी का जहाज में रहना ही बड़ी तपस्या है। एक बार परम पूज्य राधानंद महाराज बता रहे थे कि आपको पता नहीं है कि सी सिकनेस क्या होता है, वो बोल रहे थे कि मुझे वो अनुभव करना था, तो मैं एक बार पानी के जहाज में गया है, तो बोले कि मैं इतना परेशान हो गया, मैं बोला मैं पानी में छलांग लगा दूंगा, तो लोग बोले उसमें शार्क मछली है, बोले शार्कों के भोजन बनना ये बेहतर है इस जहाज के ऊपर रहने से, तो वो जहाज के पीछे रस्सी लेकर के जहाज के बाहर लटक रहे थे क्योंकि वो जहाज के अंदर नहीं रहना चाहते थे। तो सी सिकनेस इतना तीव्र होता है, इतना उसको सहन करना मुश्किल होता है। तो जो कष्ट आए उनको भी प्रभुपाद जी ने कभी उसके बारे में भगवान से कंप्लेंट नहीं किया, उसको पूर्णतया सुख से स्वीकार किया। तो इस प्रकार से गुरु अपने स्वयं के उदाहरण से हमको ये सिखलाते हैं। तो गुरु जी अपना कार्य करते हैं, प्रमाणिक गुरु, लेकिन हमको प्रमाणिक शिष्य बनने का कार्य हमको ही करना है। उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। हमको अगर प्रमाणिक गुरु प्राप्त हो गए, प्रभुपाद जी जैसे शिक्षा गुरु और हमारे दीक्षा गुरु और बाकी वैष्णवगण, तो उनका कार्य संपन्न हो गया, वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा कार्य करने के लिए हमको स्वयं ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये अपने आप नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। तो उसको प्रमाणित करने के लिए जो एक कृष्ण कथामृत बिंदु में एक लेख आया था बहुत समय पहले, राधा गोपनाथ प्रभु ने पढ़कर बताया था, उनसे ही मैंने ये पॉइंट लिए। तो बता रहे थे कि बलराम जी जो गुरु तत्व का साक्षात रूप है, उन्होंने दुर्योधन जैसा व्यक्ति को भी शिष्य के रूप में स्वीकार किया। अब दुर्योधन सोचे कि सारे अवगुण उनमें प्रकट है, तो जीवात्मा ज्यादातर दुर्योधन के जैसा रहता है। हालांकि हम लोगों की आदत होती है कि हम पांडव से या अमरीश महाराज से जो भी अच्छा चरित्र होता है उसके जैसा सोचते हैं, शायद मैं भी लगभग वैसा ही हूँ, थोड़ा बहुत कम है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमारे अंदर जो विलेन वाले गुण हैं वो ज़्यादा रहते हैं और हीरो वाले गुण भी थोड़े बहुत रहते हैं, बीच में रहते हैं। हम ना प्रहलाद है ना हिरण्यकश्यपु है, वो बीच में है। नवगंद महाराज बोलते हैं ना, आप क्या है, आप कौआ है या फिर हंस हैं? तो लोग हालांकि हम सोचते हैं हम हंस हैं लेकिन हाथ नहीं उठाते, लेकिन हम लोग क्या है, कौए और हंस के बीच में, थोड़ा सफ़ेद थोड़ा काला, बीच वाले। तो उस प्रकार से जीवात्मा का स्वभाव प्राय दुर्योधन जैसा रहता है। क्यों? दुर्योधन का प्रमुख स्वभाव क्या था? दुर्योधन को हृदय में ईर्ष्या थी भक्तों के प्रति। तो जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बने हैं हृदय में ईर्ष्या रहती है, तो ईर्ष्या रहती है अर्थात दुर्योधन का भाव हमारे अंदर। तो दुर्योधन को उन्होंने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। देखिए बलराम जी है आदि गुरु, सेवक भगवान है, साधारण गुरु नहीं है ना। कभी कभी तो हमको लगता है कि हमारे जो शिक्षा गुरु है या हमारे अथॉरिटी है या ये है क्या, शुद्ध है क्या, ये तो साक्षात भगवान है, ये तो साक्षात भगवान है। ये तो कोई इसमें ये नहीं कि बलराम जी के अंदर शक्ति है या नहीं है, ये हमको जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये हमारे मनोभाव को पहचानते हैं, इनको पता है कि मेरे लिए क्या सेवा अच्छी है, बलराम जी को सब पता है। तो बलराम जी को, बलराम जी ने उनको शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने भी शिष्यता स्वीकार की। तो बलराम जी के बहुत निकट रहे, बलराम जी ने उनको गदा युद्ध सिखाया, लेकिन फिर भी बलराम जी से उन्होंने अपने चरित्र को सुधारने के लिए शिक्षा प्राप्त नहीं की। तो माधवानंद प्रभु बताते हैं शिक्षाओं में कि कोई भी शिष्य कभी कभी गुरु के बहुत निकट हो सकता है, गुरु का व्यक्तिगत सेवक भी हो सकता है, लेकिन बाहरी रूप से जो निकटता है उसके कारण हमारे हृदय में परिवर्तन हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं दे सकते, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, उस संबंध को मनन करना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी एक बार बैठे थे व्यासासन पर, एक मच्छर आकर के बैठ गया। बोले देखो सबसे निकट मेरे ये मच्छर है, लेकिन क्या कर रहे हैं, केवल कष्ट दे रहे हैं। तो उसी प्रकार से कभी कभी शिष्य निकट भी हो तो गुरु की प्रसन्नता के बारे में सोच रहा है ऐसा अनिवार्य नहीं है, और कभी कभी शिष्य दूर भी हो लेकिन गुरु की प्रसन्नता के बारे में सोचता है तो आध्यात्मिक प्रगति करता है। तो हालांकि दुर्योधन बाहरी रूप से बलराम जी के बहुत निकट था, कई वर्षों तक बलराम जी के साथ भी रहे, कई वर्षों तक उनकी सेवा भी की, गदा युद्ध भी सीखे, लेकिन फिर भी अपने चरित्र को उन्होंने नहीं सुधारा, सुधारने के लिए प्रयास नहीं किया। तो निकटता से आवश्यक नहीं है कि हम सुरक्षित हैं। नित्यानंद प्रभु के शिष्य थे एक प्रकार के काल कृष्णदास, और काल कृष्णदास को बलराम जी नित्यानंद प्रभु की कृपा से साक्षात भगवान का संग प्राप्त हुआ। इधर गुरु का संग, इधर भगवान का, साक्षात चैतन्य महाप्रभु का संग। और चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने प्रचार करते हुए देखा दक्षिण भारत में, किस प्रकार से इतने लोगों का हृदय परिवर्तन किया, सब लोग इंद्र तृप्ति भोगवृत्ति छोड़ करके भगवान के नाम में मग्न हो गए। विषय छाड़िया से रसे माजिया मुखे बोलो हरि हरि, तो सब उन्होंने देखा, लेकिन फिर भी वो जो क्या नाम था बटाहारी स्त्रियां थी उनके प्रति आकर्षित हो गए। तो तो ये जो कार्य है वो हमको स्वयं ही करना पड़ेगा। हमारे पास गुरु है, गुरु से हमने मंत्र प्राप्त किया है, माला प्राप्त की है, सेवा प्राप्त की है, लेकिन सावधानी का कार्य हमारा स्वयं का है। भक्तिमय कार्यों में एब्जॉर्ब रहने का कार्य हमारा स्वयं का कार्य है। गुरु जी ने सब व्यवस्था कर दी है, लेकिन उस व्यवस्था के अंदर अभी हमको स्वेच्छा से उसको स्वीकार करके, उस पर मनन करके उसको आत्मसात करना पड़ेगा। तो ये दुर्योधन निकट होते हुए भी उनका लाभ नहीं ले पाए। दूसरा था कि दुर्योधन हालांकि बलराम जी के प्रति समर्पित थे, बलराम जी को जय गुरुदेव करके बोलते थे और कीर्तन करते थे, लेकिन पांडवों से द्वेष करते थे, वैष्णवों से द्वेष भाव रहते थे, और भगवान कृष्ण के प्रति भी अच्छा भाव नहीं था, उनको बंदी बनाने का प्रयास किया। तो हालांकि निकट थे, लेकिन बलराम जी का पांडवों से संबंध और बलराम जी का कृष्ण से संबंध इसको नहीं देख पाए। उनको लगा अगर बलराम जी को मैं अच्छा खिलाऊंगा पिलाऊंगा और अच्छा गदा युद्ध करूंगा तो बलराम जी पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए वैष्णव को प्रसन्न करना और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना का प्रयास करना, ये दोनों ही उसके अंग हैं। तो क्योंकि दुर्योधन का वैर भाव था, द्वेष भाव था पांडवों के प्रति और कृष्ण के प्रति, इसलिए बलराम जी से संबंध होने के बाद भी उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया। और तीसरा, दुर्योधन हालांकि बलराम जी के शिष्य बने, लेकिन फिर भी उनका स्वरूप क्या रहा, वो कलयुग के, ही वॉज कली पर्सोनिफाइड, कलयुग के एक व्यक्तिगत स्वरूप थे, क्योंकि कुछ बलराम जी के संघ का लाभ लेने के लिए प्रयास नहीं किया। इसी प्रकार से वो कहते हैं कि हम भी एक आध्यात्मिक संस्था में, एक आध्यात्मिक प्रमाणिक गुरु से संबंध होने के बाद भी हो सकता है हमारी मनोवृत्ति कली से ही प्रभावित रहे। कली से प्रभावित होने का अर्थ क्या है, कलयुग के दो प्रमुख लक्षण है, क्वारल एंड हिपोक्रेसी, दंभ और झगड़ा करना। तो अगर ये दो चीजें हमारे हृदय के अंदर रहती है, अगर हमको लगता है कि हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं तो ये दंभ है, और अगर किसी भी बात के ऊपर हम झगड़ा करने के लिए तत्पर रहते हैं तो ये क्वारल एंड हिपोक्रेसी का है। इसीलिए गुरु जी क्या सिखाते हैं, ह्यूमिलिटी एंड कॉपरेशन, नम्र बनो और सहयोग करो। क्यों, क्योंकि ये दो चीज दवाई है, जैसे एंटीडोट बोलते हैं ना, अगर कोई विष आ जाता है तो एंटीडोट होता है उसको कट करने के लिए, जैसे हम लोग वो लेते हैं, क्या होता है दवाई, एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो दो गुण हैं, जो गुरुजी अपने उदाहरण से भी सिखाते हैं, अपने प्रवचनों से भी सिखाते हैं कि नम्र बनिए और सहयोग कीजिए, तो ये दो गुणों से, नम्र बनने से दम्भ, नम्रता और दम्भता एक साथ नहीं रह सकती, और सहयोग और झगड़ा एक साथ नहीं हो सकता है। तो गुरुजी इतना बल देते, देखिए प्रभुपाद जी के सर जो सब निर्देशों में, उनमें सबसे जो प्रचलित निर्देश जो हम जानते हैं वो क्या है, इफ यू वांट टू शो योर लव फॉर मी प्लीज कोऑपरेट विद ईच अदर, आप आपका प्रेम प्रदर्शित करना चाहते हैं तो मेरे प्रति जो है वो ठीक है, लेकिन भक्तों के साथ सहयोग कार्य कीजिए। और प्रभुपाद जी कई जगह पर लिखते हैं, प्रहलाद महाराज के जो पहली प्रार्थना है उसमें लिखते हैं, अनलेस वन बिकम्स मीक एंड हम्बल, जब तक कोई नम्र नहीं बनता है, मेकिंग एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। कई जगह पर लिखते हैं, वृत्रासुर का पहली जो प्रार्थना है, अहम हरेर तप पाद एकम मूलम, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दिस वर्स इज द एसेंस सम एंड सब्सटेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिवोशन सर्विस, ये जो है ये भक्ति का सार है दासानुदास बनना। तो ऐसा कई श्लोकों में, कई जगह पर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि नम्र बनना और भक्तों के साथ सहयोग करना, ये भक्ति का सार है। तो ये गुरु जी हमको सिखाते हैं, और ये अगर हम नहीं सीख पाए तो हम किसी भी गुरु के शिष्य हों, कितना भी शास्त्र में पारंगत हों, लेकिन अगर हमारा होमवर्क नहीं किया है तब फिर हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। उसके लिए उदाहरण है रोमहर्षण सूत का। रोमहर्षण सूत साक्षात व्यासदेव जी के शिष्य थे। व्यासदेव जी ने जब इंस्टीट्यूट खोला सब वेदों को लिखने के लिए, तो उसमें पुराण, जो पुराण विभाग था उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया श्री रोमहर्षण सूत जी को। तो सारे पुराणों का ज्ञान था उनको, भागवत पुराण का भी, लेकिन फिर भी जैसा बलराम जी ही कहते हैं उनको, अदांतस्य अवनीतस्य व्यर्थ पंडित मान्यता, क्योंकि तुम्हारा इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, विनीतस्य अविनीतस्य, क्योंकि नम्रता हृदय में नहीं है, इसलिए तुम्हारा शास्त्रों को पढ़ना ये एक जो स्टेज के ऊपर कभी कभी नाट्य करने वाला व्यक्ति जो बोलता है वैसा है। तो अभी थोड़े समय पहले हम पंडरपुर में थे तो वो ड्रामा हुआ था जाऊ देवाचे का, तो उस समय तो सब स्टेज के ऊपर सब कोई तुकाराम महाराज के बच्चे का पत्नी का सब रोल करते हैं, सब लोग भक्त का रोल करते हैं, कोई इंद्रायणी का, लेकिन आते ही जैसे स्टेज के पीछे जाते हैं फिर से सब बदल जाता है। तो वैसा होता है कि वो हालांकि वो उस प्रकार का रोल कर रहे हैं लेकिन जो बोल रहे हैं डायलॉग बोल रहे हैं उससे प्रभावित स्वयं नहीं हो रहे। तो इस प्रकार से बलराम जी उनको डांटते हैं और धर्म की संस्थापना करने के लिए कि कोई व्यक्ति बिना अगर इंद्रिय नियंत्रण के और बिना नम्रभाव विकसित किए बिना अगर शास्त्रों का अध्ययन करता है तो उसको सर्प के ऊपर जो एक मणि होती है उसके समान समझा जाता है। तो फिर बलराम जी उनको घास के तिनके से तृणादपि सुनी चेरा, पता था ये तृणादपि सुनी चेरा बनना है कवत कर देते। तो इस प्रकार से बलराम जी अपने लीलाओं के माध्यम से हमको दिखाते हैं कि आदर्श गुरु का क्या कर्तव्य है और बलराम जी अपना कार्य कर रहे हैं लेकिन आदर्श शिष्य का क्या कर्तव्य है, ये हमको इन उदाहरणों से सीखना पड़ेगा। तो कल बलराम जयंती के अवसर पर श्रीमान रेवती नंदन प्रभु बहुत सुंदर व्याख्यान और प्रवचन देने वाले हैं बलराम जी की लीलाओं का, और उनसे क्या क्या हम सीख सकते हैं कैसे जीवन में लगा सकते हैं उसका विस्तार से वर्णन करेंगे कल के लिए। तो मैंने केवल आज केवल बलराम जी शिष्य से संबंधित जो भाग था उसके बारे में थोड़ा चर्चा करने का प्रयास किया। हमारे समर्पण गोप प्रभु ने आदेश दिया है कि एक प्रश्न के लिए समय रखें, तो उनका आदेश पालन करने के लिए अभी 2-3 मिनट है, तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे यहाँ पर। आपका ही प्रश्न रहेगा आपकी इच्छा है ना, ना इफ देयर इज अ क्वेश्चन यू आस्क, देयर नो क्वेश्चन डोंट मेक ए क्वेश्चन।
सो व्हेन यू आर टेलिंग लास्ट थिंग अबाउट इवन इफ वन स्टडीज शास्त्रास इवन इफ वन हैज द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल मास्टर और ही थिंक्स लाइक दैट बट स्टिल ही कैनॉट मेक प्रोग्रेस विदाउट ह्यूमिलिटी एंड कोऑपरेशन। So my question is about how to become humble, because we get great inspiration, many of us, at least I myself, seeing your example of humble dealings with every Vaishnava. I hope everyone agrees, many of the devotees. So how to go closer to understand this, and what is this humility actually means?
ह्यूमिलिटी विनम्रता के बहुत परिभाषाएं, लेकिन आज के संदर्भ में एक परिभाषा जो है वो है सदैव गुरु का स्मरण करते हुए गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, ये विनम्र भाव माना जाता है। जब हमको स्वयं को केंद्र बिंदु रखते हैं तब जो निर्णय लेते हैं वो वास्तव में नम्र दिख सकता है लेकिन वास्तविक नम्रता नहीं। गुरु की प्रसन्नता को जब केंद्र में रख करके निर्णय लिया जाता है, हमको अच्छा लगे या नहीं लगे, हम उसमें दक्ष हैं या नहीं हैं, बाकी लोग कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे, इन चीज़ों को छोड़कर जब गुरु की प्रसन्नता को केंद्र में रख करके सोच करके हम निर्णय लेते हैं तब वो भी विनम्रता का लक्षण है। तो इसके लिए व्यक्ति को गुरु की वाणी सुनकर और गुरु के शिक्षाओं पर मनन कर समझना चाहिए कि गुरु जी क्या चाहते हैं। इस स्थिति में अगर हम गुरुजी से पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे, और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि कोई भी प्रश्न हमारे मन में आ जाए तो हमारे जो आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी और हमारे जो भी दीक्षा गुरु हों उन्होंने इतने प्रवचन दिए हैं कि वो प्रश्न एज इट इज वही शब्दों में और शायद आपसे भी और अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो प्रश्न पूछा गया है उनसे और उसका उत्तर रिकॉर्डेड है, क्योंकि कलयुग में भूल जाएंगे तो इसलिए रिकॉर्डेड है, टेप पर है। लेकिन या तो हम उस तक पहुंच नहीं पाते, सुन नहीं पाते, या फिर सुनने के बाद भी उसको समझ नहीं पाते, दोनों में से एक चीज होती है। अन्यथा हर स्थिति में गुरु जी क्या चाहते हैं कोई भी स्थिति नहीं नहीं है। हम जब प्रेम महोत्सव के लिए गए थे 2-3 साल पहले वाड़ा में तो महाराज जी बोले थे कि ये जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं मैं 30 साल से इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, बस पूछने वाले लोग बदल रहे हैं, प्रश्न वही। तो अर्थात जैसे कि हमको याद है हम जब पहले आते हैं तो पूछते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, आत्मा फिर से पुनर्जन्म होता है, तो वो प्रश्न आज भी कोई आएगा तो वही पूछता है। हम पहले आते तो बोलते दंडवत ऐसे क्यों करते, ऐसे क्यों नहीं करते, ऐसे क्यों करते, कितना बार लोग पूछते। तो सब लोग लगभग उसी रास्ते से जाते हैं, सबके मन में लगभग उसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर है। तो ये हमारे व्यक्तिगत सिंसेरिटी के ऊपर है कि हम उन प्रश्नों का उत्तर जानें और उन उत्तरों के अनुसार उनको जीवन में लगाने का प्रयास करें, और नहीं भी कर पाते तो नम्रता अपने आप आ जाएगी। गुरुजी कहते हैं नम्र बनिए, या इस स्थिति में ऐसा कार्य कीजिए। हम नहीं कर पा रहे और हमको पता है कि ऐसा करना है, तो हम कैसे गर्वित हो सकते हैं? हम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे। गुरु जी कहते हैं ध्यानपूर्वक जप कीजिए, और हम जप में सोते हैं तो कैसे गर्वित हो सकते हैं जब पता है कि गुरु जी को माला लेते समय बोला था मैं 16 माला ध्यानपूर्वक करूँगा, तो वो भी हमारे जो शपथ है, जो हमारी प्रतिज्ञा है, उसका भाग बन गया। बोल सकते थे 16 माला करूँगा, लेकिन बोला क्या? ध्यानपूर्वक करूँगा। बहुत लोग बोलते हैं 16 माला नियमित रूप से ध्यानपूर्वक करूँगा, तो जब ध्यानपूर्वक नहीं कर रहे, जब डिस्ट्रैक्टेड रूप से कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से गुरु जी उससे प्रसन्न नहीं होते। और गुरु की आज्ञा सबके लिए है। अभी तो कितना रिकॉर्डेड में है, सब गुरु का पुस्तक छप गई गुरु की आज्ञा के ऊपर, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर बन गए। अभी कोई ये नहीं कह सकता गुरु जी क्या चाहते हैं ये मुझे पता नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो हम व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, मैं आपको मतलब वीडियो लेक्चर दिखा सकता हूँ जहाँ गुरु जी कह रहे हैं कि मेरे सब शिष्यों के लिए निर्देश है, मैं ये सब शिष्यों से ये अपेक्षा करता हूँ ये कार्य कीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ कंडीशनल बोल रहे हैं कि ये इस जगह पर रहने वाले, इस टेम्परेचर पर रहने वाले, इस महीने में, इस साल में रहने वाले शिष्यों के लिए, प्रत्येक शिष्य के लिए निवेदन कर रहा हूँ कि ये आप कीजिए। तो ये ऐसा कोई नहीं कह सकता कि गुरु जी क्या चाहते हैं पता नहीं। ये हमारे दृढ़ संकल्पता में कमी है जिसके कारण हम गुरु की आज्ञा को तीव्रतापूर्वक हृदय में धारण नहीं करते हैं, और उसका कारण है कि अभी तक हमें जो लक्ष्य है उसके प्रति जो पूरी तरह से जागृत नहीं हुए। ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय। गुरु जी जो होते हैं वो क्या करते हैं, अज्ञान के अंधकार को मिटा देते हैं, और अज्ञान तिमिर अंधस्य, और जो हमारा अंधापन है उसको भी ज्ञानंजन शलाकाय हटा देते हैं, क्योंकि अंधा व्यक्ति नहीं देख सकता है और आँख हो तो अंधेरे में नहीं देख सकता। तो गुरु जी दोनों कार्य करते हैं, अंधकार भी हटा देते हैं और आँख भी खोल देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, आँख बंद कर लेते हैं। तो आँख वाला व्यक्ति हो लेकिन आँख बंद कर ले तो अंधेरा भी नहीं है, आँख भी ठीक है, लेकिन अब बंद करने का और खोलने का जिम्मेदारी किसका है? अब गुरु जी आके ऐसा थोड़े कि आँख पकड़ के पूरा खोलेंगे, वो हमारी स्वेच्छा से हमको आँख खोलना है, लेकिन गुरु जी की कृपा से अंधकार नष्ट हो जाता है, और जो अंधकार और अंधापन दोनों गुरु जी के आदेश से दूर हो जाता है, लेकिन आँख खुली रखना ये हमारा जिम्मेदारी। तो इस प्रकार से गुरु के निर्देशों को केंद्र में रख करके हमारे सारे निर्णयों को लेना और उस प्रकार से जीवन यापन करना, उस प्रकार से सोचना, उस प्रकार से भक्तों के साथ संबंध स्थापित करना, उस प्रकार से सेवा करना, ये एक नम्रता का एक क्या कहते हैं, एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक, एक व्यवहारिक रूप से नम्रता इस तरह से हम डेवलप कर सकते, देख सकते। हरे कृष्ण। ग्रंथ राशि भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, बलराम जयंती महामहोत्सव की, ताई गौर प्रेमानंद।